हेलो दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज के वीडियो में सरकार ने पीएम किसान निधि योजना के बारे में भी जानकारी दे दी है, अगली किस्त कब आने वाली है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। आम जनता से जुड़े कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 साल की महिला में दुनिया का पहला अनोखा CRIB एंटीजन ब्लड ग्रुप पाया गया है। यानी दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप अब तक दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया था। दरअसल हुआ क्या कि कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आ जाने के बाद महिला को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो जहां पर डॉक्टरों ने उसका ब्लड ग्रुप चेक किया, जांच में जो ये रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और कि भारत रूस से हथियार, तेल वगैरह खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। 1 अगस्त से यह लागू भी हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। इधर सरकार ने भी द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया है। सरकार इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार की ओर से आए पहले रिएक्शन में ये कहा गया कि सरकार इस कदम के प्रभावों का अध्ययन कर रही है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस व्यापार समझौते पर बातचीत महीनों से चल रही है। इधर कहा जा रहा है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने की एक वजह ब्रिक्स भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका विरोधी देशों का ग्रुप है और इंडिया इसका मेंबर है। यानी ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के पीछे ब्रिक्स को भी एक वजह बताया है। उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात कही। भारत से ट्रेड डील के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का भी मसला है। ये अमेरिका विरोधी देशों का ग्रुप है और भारत उसका मेंबर है। ये डॉलर पर हमला और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को भारत और रूस व्यापार भी चुभ रहा है। जुलाई में भारत ने रूस से 36% कच्चा तेल मंगवाया है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते क्योंकि इस समय दुनिया में उनका टैरिफ सबसे ज्यादा है। वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार हैं, लेकिन देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अब होगा क्या दोस्तों कि अमेरिका के इस टैरिफ से वहीं के लोगों की जेब कटने वाली है और भारत को भी नुकसान होगा ही। और तो और देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में ये अचानक खटास भी आ गई है, जब अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आने वाले प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगाने का ये ऐलान कर दिया है। और इस फैसले का असर न सिर्फ भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा बल्कि अमेरिकी ग्राहकों की जेब पर भी ये भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट भारत से अमेरिका जाते हैं अब वे वहां पर महंगे हो जाएंगे और भारत से अमेरिका को बहुत सारे सामान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही इस टैरिफ के चलते भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान हो सकता है, खास तौर पर उन कंपनियों को जो सिर्फ अमेरिकी मार्केट पर निर्भर हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि अमेरिका से बातचीत करके ये मामला सुलझाया जाए। और आपको बताएं, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते यानी BTA पर बातचीत चल रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये टैरिफ ऐसा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना भी एक लापरवाही है, भले ही पर्सनल इमरजेंसी हो। सड़क पर पीछे की गाड़ियों को सिग्नल देना ड्राइवर की जिम्मेदारी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बिना किसी अलर्ट के हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही है और ऐसे मामलों में कोई हादसा अगर होता है तो फिर अचानक ब्रेक लगाने वाले ड्राइवर को जिम्मेदार माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल पुराने एक मामले पर फैसला सुनाया है। हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार में ही चलती हैं और ऐसे में अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वे पीछे चल रही गाड़ियों को चेतावनी या संकेत दें। बड़ी खबर देखिए आप। केस कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वर्मा को फटकार, कहा कि आपके व्यवहार से भरोसा नहीं होता। जांच कमेटी की प्रक्रिया पर ऐतराज था तो क्यों नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर सवाल भी उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि उनका व्यवहार भरोसे के लायक नहीं है और पूछा है कि अगर उन्हें जांच समिति की प्रक्रिया पर ऐतराज था तो उन्होंने उसी वक्त उसे चुनौती क्यों नहीं दी। आपको बताएं, जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की गई है। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया। वहीं आप देखिए 15 साल से अधिक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन पाने के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने के आदेश सुनाए हैं। अदालत ने कहा कि 15 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं। और कल भी एक बड़ा फैसला आया था, आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि नौकरी के दौरान और उसके कारण हुई दुर्घटना मुआवजा मिलेगा, यानी ऑफिस जाते जाते समय हुए हादसे में ड्यूटी पर माने जाएंगे। कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अच्छा, इसके अलावा इसरो और नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट निसार लॉन्च हो चुका है। घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की इसकी क्षमता रहेगी। 97 मिनट में यह धरती का चक्कर पूरा करेगा। कुल मिलाकर कहें कि अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी निसार को बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया और इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी कि करीब 12,500 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आया और इसे नासा और इसरो ने साथ मिलकर बनाया है। GSLV-F16 रॉकेट के जरिए बुधवार 30 जुलाई को इसे लॉन्च कर दिया गया। निसार जो है वो 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर यह पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा। और तो और इसके पास बादलों में, घने जंगलों, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है और इसकी वजह से कई बड़े बड़े रिसर्च किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव से GDP 1.5% तक बढ़ सकती है और ये 4.5 लाख करोड़ के बराबर है। इकोनॉमिस्ट NK सिंह ने JPC के सामने ये राय रखी है। एक देश एक चुनाव पर JPC यानी संयुक्त संसदीय समिति की 6th बैठक बुधवार को संसद भवन NXC में हुई। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह और इकोनॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर प्राची मिश्रा ने अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को आर्थिक रूप से फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 1.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आप देखिए, प्रकृति से जुड़ी ये घटनाएं, रूस में दुनिया का 6th सबसे बड़ा भूकंप देखने को मिला है। 8.8 इसकी तीव्रता रही। 5 मीटर तक सुनामी उठी। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का 6th सबसे बड़ा भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 8.8 बताई जा रही है और भारतीय समय के अनुसार आपको बताएं तो ये भूकंप बुधवार सुबह 4:54 पर आया और इस भूकंप की वजह से, क्योंकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी 8.8 की, तो ऐसे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया है। इसके अलावा अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को भी खाली करा लिया गया है। अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीप तक सुनामी की लहरें पहुंच चुकी हैं। रूस में भूकंप से बड़ी तबाही देखने को मिली है। ये अलग अलग तस्वीरों में आप अपडेट भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो रूस में आए इस भूकंप को लेकर JNU प्रोफेसर के मुताबिक इस भूकंप का असर 12 से भी अधिक देशों में पड़ेगा और भूकंप के बाद सुनामी भी उसी तीव्रता में आएगी। आमतौर पर सुनामी की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और लहरें लगभग 12 फीट ऊंची होती हैं और ये सुनामी किसी भी क्षेत्र के लिए कोई त्रासदी से कम नहीं होगी। रूस के पूर्वी कामचटका में बुधवार को भूकंप आने से अब लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। और तो और आपको बताएं कि भूकंप का पूर्वानुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है, हालांकि विज्ञान अपने क्षेत्र में लगातार शोध कर रहा है। आज की तारीख में सैटेलाइट से आंकड़े मिलते हैं, उससे लगातार मैपिंग करें तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सकता है जहां पर भूकंप आने की उम्मीदें ज्यादा है और उससे एक दो दिन पहले पूर्वानुमान लगाया भी जा सकता है। हालांकि इसको लेकर जापान और कई देशों में रिसर्च भी हुई है और उनका यह मानना है कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भूकंप का पूर्वानुमान प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल रशिया अर्थक्वेक को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत का सीरिया से नया रिश्ता शुरू हुआ है। अल सरा सरकार से पहली आधिकारिक मुलाकात हुई है। भारत ने सीरिया की अंतरिम सरकार से पहली बार औपचारिक बातचीत की है। नई सरकार की अगुवाई पूर्व अलकायदा नेता अहमद अल सरा कर रहे हैं। भारत के डिप्लोमेट ने दमिश्क में सीरियाई मंत्रियों से स्वास्थ्य, शिक्षा और फार्मा सेक्टर में सहयोग पर चर्चा की है। असद शासन के पतन के बाद ये भारत की पहली कूटनीतिक पहल है। केंद्रीय विद्यालयों में एनरोलमेंट 5 साल में सबसे कम देखा गया। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में एनरोलमेंट की बात करें तो 5 साल में सबसे कम पर पहुंच गए। सरकार ने संसद में इस तरह की जानकारी शेयर की है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां 30 साल की एक समा परवीन अरेस्ट की गई है। गुजरात ATS ने दावा किया कि अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। 7 दिन पहले भी 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये ताजा अपडेट आ रहा है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने बेंगलुरु के हेब्बल इलाके से समा परवीन को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि 30 साल की ये परवीन सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़ी थी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, चीन के संघाई में कोमे तूफान से भारी बारिश, तेज हवाएं भी चल रही हैं। करीब 3 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए हैं। चीन की संघाई में भी बुधवार शाम को टाइफून कोमे ने दस्तक दे दी। भारी बारिश, तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहीं रूस में भूकंप और सुनामी के बाद चीन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महिला एथलीट को अब जीवन में एक बार जेंडर टेस्ट कराना कराना जरूरी हो गया है और इसके लिए बुधवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने SRY जीन टेस्ट लागू किया है। जो खिलाड़ी इस टेस्ट से नहीं गुजरेगी वह वर्ल्ड रैंकिंग प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेगी। ये कानून बीते सालों में जेंडर चेंज करा के महिला बनकर कॉम्पिटिशन में उतरने वाली खिलाड़ियों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये नियम 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब अकाउंट के लिए 16 साल की उम्र अब जरूरी होगी। 10 दिसंबर से ऐसा नियम लागू होने वाला है। पिछले साल सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानून बना था। वहीं आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी की IT सर्विस फिर से शुरू कर दी है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बाद अचानक सर्विस को बंद कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर से चालू हो गई है। और सबसे बड़ी खबर हमारे किसान भाइयों के लिए, 2 अगस्त को आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलने वाली है। PM मोदी वाराणसी से इसे जारी करेंगे। 9 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों को 2,000 रुपए मिलेंगे। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो 2 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी हो जाएगी। PM किसान के ऑफिशियल ट्विटर यानी एक्स अकाउंट से इसका ऐलान हो चुका है। यानी अब तय हो गया कि 2 अगस्त को किसान भाइयों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की राशि आ जाएगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। स्पैम कॉल में 97% की कमी आई है। सरकार ने बैंकिंग कानून में बड़ा संशोधन किया है। अब गवर्नमेंट बैंकों को ये अधिकार मिल गया। सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 में संशोधन अधिसूचित किए हैं जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बिना दावे वाले शेयर और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर सकेंगे और ये उन्हें कंपनी कानून के तहत कंपनियों की श्रेणी में लाता है। अब इन संशोधनों से बैंकों को लेखा परीक्षकों को भुगतान करने और उच्च गुणवत्ता वाले लेखा परीक्षा पेशेवरों की नियुक्ति में भी मदद मिलेगी। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, इंडियन DJ एक्सपो 2025 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा और इस एक्सपो में 500 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हिस्सा लेंगे। ये एक्सपो म्यूजिक और इवेंट प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर आप देखिए, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एम्स में मिरेकल ऑफ माइंड पर व्याख्यान दिया है। उन्होंने जीवन के हर पल को पूरी चेतना के साथ जीने का मंत्र दिया और कहा कि लंबी उम्र से ज्यादा जरूरी है हर पल को आनंद से जीना। सदगुरु ने शरीर की कोशिकाओं और पुरखों के ज्ञान के महत्व पर भी प्रकाश डाला और विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। दिल्ली NCR में 22 बिल्डर्स पर FIR दर्ज की गई है। 47 ठिकानों पर छापेमारियां हुई। होम बायर से धोखाधड़ी में CBI का एक बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली NCR में हजारों होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ CBI ने बड़ी कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 FIR दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये कार्रवाई एक सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ी हुई है जिसमें बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर होम बायर्स को ठगा था। वहीं आप देखिए, समुद्र में भारत की ताकत बढ़ने वाली है। 9 सेना को मिल सकती है 9 आधुनिक पनडुब्बियां। प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट पर काम तेज हो गया है। बड़ी खबर आप देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कोर टीम में बड़े फेरबदल की तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है और इस अहम बैठक में पार्टी की 370 से अधिक सदस्यीय केंद्रीय समिति भी हिस्सा लेगी। हो सकता है शी जिनपिंग की पूरी टीम 3 महीने में बदल जाए। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर में आप देखिए, हिमाचल सरकार की बुधवार को संपन्न कैबिनेट मीटिंग में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों यानी करुणामूलक आधार पर नौकरियों के सभी मामले एकमुश्त निपटाने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने इस कोटे से नौकरियों के लिए आय की सीमा 2,50,000 से बढ़ाकर 3,00,000 सालाना करने को भी मंजूरी प्रदान की है। आश्रितों की नौकरियों के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और पेरेंट्स विहीन आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में फैक्ट्री नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी है और ऐसे में अब महिलाएं भी फैक्ट्री में ओवरटाइम कर सकेंगी। अभी तक नियमों में 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान था, अब महिलाएं अपनी इच्छानुसार 12 घंटे तक ड्यूटी करके ओवरटाइम कर सकेंगे। इसके लिए महिलाओं को ओवरटाइम मिलेगा। हरियाणा से बड़ी खबर देखिए, अब चारों शिफ्टों के एग्जाम के 16 पेपरों के आंसर की जारी हो गई है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही खबर आ रही है, झज्जर के पहलवान ने कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के पहलवान हरदीप ने ग्रीस में आयोजित U17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा में घर बनाना सस्ता होगा, रेत और बजरी सस्ते कर सकती है सरकार, रॉयल्टी रेट में संशोधन किया जाएगा। वहीं इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस कम करने की भी तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार आम लोगों को फिर से राहत देने वाली है। 1 अगस्त 2025 को कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है जिसमें खनन नियम 2012 में फिर से अमेंडमेंट किया जाएगा। हरियाणा के शहरों में 3 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन, राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल किया। अनिल विज ने कहा कि हर गांव में रोडवेज बस भी चलेगी। हरियाणा सरकार ने आम लोगों की सुविधाओं को लेकर 2 बड़े फैसले लिए। एक और जहां मेट्रोपॉलिटन शहरों में अब केवल 3 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा, वहीं दूसरी ओर हर गांव में हरियाणा रोडवेज की बस सेवा शुरू की जाएगी। इन दोनों फैसलों से सीधा सीधा फायदा हरियाणा राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों को मिलेगा। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट पर CM की मंजूरी। रजिस्ट्री के लिए 3 अगस्त तक अपॉइंटमेंट्स रोकी गई हैं। 4 तारीख से नई दरों पर रजिस्ट्रियां होगी। वहीं आप देखिए, बिहार से जुड़ा बड़ा अपडेट, बिहार की 1,00,000 आशा कार्यकर्ताओं को नीतीश सरकार सरकार ने गिफ्ट दे दिया है। 1000 की जगह मिलेंगे 3000। यानी चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार में आशा कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के इस फैसले से बिहार में 1,00,000 आशा कार्यकर्ताओं, 5,000 आशा फैसिलिटेटर और 5,000 से अधिक ममता कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। बिहार में महागठबंधन यात्रा निकालेगा, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिहार में महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्यव्यापी यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये यात्रा रक्षाबंधन के बाद शुरू होगी और सभी मंडलों को कवर करेगी और राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। बिहार में 15 दिनों तक पुलिस चलाएगी ऑपरेशन नया सवेरा। डीजीपी ने कहा, मानव तस्करी में कुछ साल में 7,000 बच्चे लापता, 3,000 का पता नहीं चल पाया है। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ऑपरेशन नया सवेरा की शुरुआत करने जा रही है। 31 जुलाई से शुरुआत और 14 अगस्त तक चलेगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आप देखिए, डीएमएफ के नियम में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। नवा रायपुर में 8 एकड़ में क्रिकेट अकादमी भी बनेगी। रेत की अब ई नीलामी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 31 जुलाई को झारखंड आएंगे, एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर यूपी यानी उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी सरकार तकनीक के सहारे शासन प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में सेवा योजन विभाग द्वारा विकसित सेवा मित्र पोर्टल, यह हजारों कुशल कामगारों के लिए रोजगार का सशक्त जरिया भी सिद्ध हो रहा है। योगी सरकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर हजारों कामगार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के साथ ही उत्तर प्रदेश माई पोर्टल की शुरुआत की है। उन्होंने मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य स्टार्टअप के लिए आवश्यक उपकरणों और उपकरणों तक पहुंच को आसान बनाना है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी की स्थिति अब दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। राज्य सरकार के रोजगार पोर्टल पर अब तक कुल 25,68,321 युवा बेरोजगार के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10,46,000 से ज्यादा ओबीसी युवा रोजगार की तलाश में है। इनमें से 5,73,000 पुरुष और 4,72,000 के करीब महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी से जुड़ी खबर देखिए आप, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, अगस्त महीने में बिल बढ़कर आएगा। दिल्ली एनसीआर में पिछले 7 घंटे से मूसलाधार बारिश देखी जा रही है, कई इलाकों में पानी भर गया, जनजीवन अस्त व्यस्त। देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बुधवार रात 10 बजे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और भी तेज बारिशों की संभावनाएं व्यक्त की है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश, कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य के पूर्वी हिस्से में गुरुवार को भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। चंबल खतरे के निशान से ऊपर, नर्मदा 1 फीट नीचे। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हरियाणा के 16 जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा और अगले 4 दिन तक मौसम खराब रहने के अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बैंकिंग जॉब से जुड़ा हुआ अपडेट है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए 1 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का मुनाफा 21% घटा है। पहली तिमाही में 2,161 करोड़ रहा। आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन टीएन मनोहरन का निधन हो गया, 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया। सीए स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी किताबें भी लिख चुके हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 81,482 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 34 अंकों की तेजी रही और ये 24,855 के स्तर पर बंद हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जमानती धाराओं में बेल नहीं देने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे से स्पष्टीकरण मांगा गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद सेक्सटॉर्शन की आरोपी 2 महिलाओं को जमानत नहीं देने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे से स्पष्टीकरण मांगा गया है। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई देखिए आप, अब अपात्र लोगों की चाल नहीं चलने वाली है। राशन कार्ड पर विभाग सख्त हो गया है, टैक्स और गाड़ी वालों की जांच की जाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लोगों तक सस्ता राशन पहुंचाने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर अब विभाग ऐसे लोगों की जांच करेगा जो आयकर दाता है या जिनके नाम पर निजी वाहन रजिस्टर है, वो फिर भी अगर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ लेते पाया गया तो उससे अब तक उठाए गए जितने राशन की बाजार मूल्य से वसूली की जाएगी। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में संविदा नियुक्तियों की अनिश्चितता और सीमित अवसरों से निराश होकर अब नर्सिंग और जीएनएम, फिजियोथेरेपी और डेंटल जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रशिक्षित युवा विदेशी नौकरियों की ओर रुख कर रहे हैं। विशेष रूप से जर्मनी में भारतीय अभ्यर्थी बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक आपको बताएं, जर्मनी में प्रशिक्षित हेल्थ प्रोफेशनल्स की भारी मांग है और यहाँ पर भारतीय युवा शुरुआत में ही यानी नौकरी लगते ही 3 से 4 लाख रुपए तक हर महीने तक की आमदनी अर्जित कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर रामदेव रहा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, भोपाल इंदौर में अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। 1 अगस्त से यह फैसला लागू होने वाला है। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश के लिए आखिरी मौका, फाइनल राउंड की समय सारणी जारी हो गई है। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश की ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी सभी राज्य लागू करेंगे। देश भर के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। भोपाल में दलित पिछड़ा समाज संगठन का प्रदर्शन, 52% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश हुई। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सुपर 100 योजना में 3 अगस्त को एग्जाम आयोजित किए। मिड डे मील वर्कर्स का लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, मात्र 2000 रुपए मासिक वेतन पर काम करने को मजबूर है। न्यूनतम वेतन और स्थायी नियुक्ति की मांग की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने के दाम 721 रुपए बढ़कर 99,017 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी की कीमत 93 रुपए बढ़कर 113,400 रुपए प्रति किलो हो गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 31 जुलाई गुरुवार को मेष राशि वालों को फायदेमंद काम मिल सकते हैं। सिंह राशि वालों को नौकरी में अच्छी जिम्मेदारियां मिलेगी। कन्या राशि वाले प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे। मकर राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में टीम वर्क से सफलता हासिल होगी। कुंभ राशि वालों के करियर की समस्याएं भी सुलझेंगी। मीन राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, करियर में भी लक्ष्य हासिल कर लेंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों के करियर में उलझने हो सकती हैं और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।